नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वी द चेन सीरीज में। यह है ब्रह्मा कुमारी की विशेष प्रस्तुति सोशल मीडिया स्ट्रीम्स पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर। पिछले कई दिनों से हम वी द चेन सीरीज में बातचीत कर रहे हैं, अपने मन के सवालों के लिए सवाल ढूंढ रहे हैं और ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ राजयोगी भाई बहन हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अगर हमें इमोशनल सपोर्ट और थोड़े बहुत स्पिरिचुअल गाइडेंस और सपोर्ट की जरूरत है तो वो भी वो ऑफर कर रहे हैं। पिछले दिनों से जो ये सफर हमारा जारी रहा है, इसमें बहुत सारी अच्छी बातें निकल कर आई हैं और हमने एक दूसरे की मदद के लिए जो एक कोशिश की थी, जो पहल की थी, वो बहुत ही कारगर साबित हुई है। आज भी हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी इसके एक ऐसे ही वरिष्ठ राजयोगी भाई जुड़ेंगे। हमारे साथ ब्रह्मा कुमार पीयूष भाई जी हैं जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। तो पीयूष भाई जी, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में।
धन्यवाद, आपका धन्यवाद।
पीयूष भाई जी, पिछले जो कुछ समय से जो बदलाव का वक्त चल रहा है, कुछ ऐसा समय चला है जिसके लिए हम में से बहुत सारे लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। हम में से कुछ लोग ऑफ द गार्ड कॉट हो गए हैं और इससे हम डील करने के लिए अलग अलग तरीके खोज करके निकाल रहे हैं। हम में से कुछ दोस्त हैं जो ऐसे बदलाव के दौर में हिम्मत रख रहे हैं। अगर हमें कहीं पर मदद की जरूरत पड़ी है तो हमने बेझिझक हमने मदद मांगी है और वो मदद मिली भी है। तो आज आप हमारे साथ हैं तो हमारे दोस्तों के सवालों को हम इनवाइट करेंगे कि हमारे जो दोस्त प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में, जहां पर भी यूट्यूब या फेसबुक जहां पर भी देख रहे हैं, वहां पर वो आप कमेंट्स में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने विचार लिख सकते हैं। यू कैन गिव अस अ शाउट आउट, जैसा भी आपको लगे। तो उनमें से कुछ विचारों को हम प्रश्नों के रूप में जो विचार होंगे वहां हम भाई जी से आज मार्गदर्शन लेंगे। पहला तो प्रश्न मैं कल के सवालों में से एक पूछना चाहूंगा पीयूष भाई। ये जो बदलाव का दौर है, इसमें हम में से बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की चीजों को डील कर रहे हैं। नॉर्मल सिचुएशंस में ये इतनी मुश्किल नहीं होती, बट एक हमारे दोस्त ने कल सवाल पूछा था कि मुझे गुस्सा बहुत आता है और पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, और पिछले जब से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है 3-4 महीने से, तब से मैंने देखा है कि मेरे ही व्यवहार में ये बदलाव मेरे को महसूस होने लगा है। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है और कैसे मैं इस एंगर को डील करूं, वो ये बात कहते हैं। आप गाइड करेंगे।
ये बड़ी कॉमन सी बात हो गई है। मैं सहमत हूं जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है, क्योंकि पहली बात क्या हुई है, एकदम से हमारा जो जो वर्क कल्चर है, जो ऑफिस का एक अलग कल्चर हुआ करता था, अभी हम लोग घर से काम कर रहे हैं तो घर का कल्चर एकदम से बदली हुआ है, और इसलिए कई बारी गुस्सा आना थोड़ा सा कॉमन सा हो गया है। लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहूंगा कि गुस्सा, क्रोध किसी समस्या का समाधान नहीं है। मेडिकल साइंस ये मानती है कि अगर एंगर में हम लोग डी प्रीफिक्स कर दें तो इट बिकम्स डेंजर। तो जब भी मुझे क्रोध आए तो मैं अपने आप को याद दिलाऊं कि आई एम इन डेंजर जोन। और हम सब ये भी जानते हैं कि क्रोध की शुरुआत मूर्खता से होती है और उसका अंत पश्चाताप से होता है। क्रोध किसी समस्या का समाधान नहीं है, शांति समाधान है। तो जो भी हमारे दर्शक या व्यूअर ने ये प्रश्न पूछा है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि वो अपने स्पाउस, अगर वो मैरिड हैं, या अपने पेरेंट्स या जो भी उनके आसपास के लोग हैं जिनके कारण उनको लगता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो जरूर उनके साथ बैठें और अपने जो भी इश्यूज हैं अगर उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे, और अगर वो अपने दिन की शुरुआत, अपने काम की शुरुआत कुछ मिनटों के लिए मेडिटेशन से करेंगे, तो जैसे ही हम मेडिटेट करते हैं तो हम अपने आसपास एक बहुत सुंदर हाई एनर्जी का सर्कल क्रिएट करते हैं। और उस हाई एनर्जी से क्या होता है कि अगर कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति हमारे विपरीत भी होती है, स्टिल वी आर एबल टू मेंटेन कूल एंड काम एंड क्वाइट। थैंक यू वेरी मच।
ये जो बात आप अभी कह रहे थे कि भाई ऐसा होता है और ये नेचुरल चीज है, पहले तो एक चीज ये क्रिएट करती है कि एक एक्सेप्टेंस क्रिएट हो जाता है कि हाँ, ऐसा होना स्वाभाविक है, सभी लोगों के साथ हो सकता है। दूसरा, आपने ये बात कही कि उसके लिए अगर हम काम करें तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। एक और प्रश्न है, काम्या आहूजा हमारे साथ कल जुड़े थे और उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि प्लीज हेल्प मी, कि अभी मैं अपनी बेटी को पढ़ाते टाइम बहुत टेंशन आता है, ऐसा वो कहते हैं। एक तो ये है कि लोग भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बच्चे भी घर में ही रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे ये जो परिवर्तन हुआ है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको भी मतलब ये एक टेंशन वाला टास्क हो जाता है, तो उसे उनके लिए गाइड करें। काम्या,
काम्या जी, मैं आपसे सहमत हूँ। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स, मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, मैं भी उनको कंसल्ट करता रहता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम अपने बचपन के दिन याद लाएं, जिससे आपकी बेटी अभी गुजर रही है। तो कई बारी बच्चे हमारी बात नहीं मानते, कई बारी बच्चे जो हम उनको बता रहे हैं वो नहीं करते। समझिए, आप उनको कोई बात बता रहे हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उस टाइम पर हमें ये समझने की जरूरत है कि वो बच्चा है भी, और हम भी जब बच्चे थे तो हम ये किया करते थे। तो हम एकदम से आवेश में ना आए, हम अपना टेम्पर लूज ना करें। और दूसरा क्या है, शायद काम्या जी की जो प्रॉब्लम मैं समझ पा रहा हूँ कि उनको कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है, क्योंकि उनको वर्क फ्रॉम होम भी करना पड़ रहा है, बच्चे को पढ़ाना पड़ रहा है। और आजकल जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, घरों में उनके काम बहुत सारे बढ़ गए हैं, क्योंकि जो मेड हैं वो भी अभी नहीं आ पा रही हैं। तो इसलिए अगर आपके जो हस्बैंड हैं, आपके जो पति देव हैं, उनसे मिलकर के आप अगर कहीं ऐसा कोई रूटीन अपना बनाएं ताकि वर्क की थोड़ी एलोकेशन कर सके, थोड़ा आप भी उस बच्ची के साथ बैठें, थोड़ा हस्बैंड भी उस बच्ची के साथ बैठें, और उस बच्ची को थोड़ा सा हम फ्री टाइम भी हमें जरूर देना चाहिए। क्योंकि आजकल बच्चे क्या है, अपनी बहुत सारी बातें अपने बच्चों पर थोपना चाहते हैं। तो वो थोपना जो है, दैट्स नॉट ए वेरी गुड आइडिया। ऑफ कोर्स वी कैन गाइड देम, वी कैन यू नो टेल देम, वी कैन शेयर विद देम। और आजकल हमें बच्चों से जो भी बात करनी है वो बहुत फ्रेंडली होके कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं आजकल कोई भी बात वो अथॉरिटी वाले वे में। जैसे मैं अपनी बात कहूं, 50 ईयर्स बैक अगर मेरे पेरेंट्स से यू नो वट एवर दे टोल्ड मी विद अथॉरिटी, आई वुड एक्सेप्ट इट, बिकॉज एनवायरमेंट दूसरा था। अभी बच्चों के पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से और नेटवर्क से आ रही है, तो बच्चों के अंदर वो सहन करने की शक्ति इतनी ज्यादा नहीं है। तो यदि आप चाहती हैं कि घर का माहौल बहुत अच्छा रहे, तो कहीं हमें बच्चे के लेवल पर आकर, तभी वह बच्चे को अगर बताएंगे तो मैं समझता हूं आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। थैंक यू वेरी मच।
जी पीयूष जी, अगला प्रश्न है, मनोज आबूसरिया जी पूछते हैं। वो कहते हैं कि अतीत की स्मृतियों को पूरी तरह मिटाने के लिए क्या करें, कृपया मार्गदर्शन करें। हमारे से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस लॉकडाउन के टाइम में ऐसा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा टाइम फ्री में मिल रहा है अभी, तो हम पास्ट की बातों को याद करने लगे हैं। एक जगह तो हम कहते हैं कि नॉस्टैल्जिया अच्छी चीज होती है, बट जो बुरी चीजें होती हैं पुरानी वो याद आने लगती हैं, तो लोग उसी में रम जाते हैं। लगता है कि भाई हमारे लाइफ में हमने कुछ किया नहीं है, या बहुत सारे जो फॉल्ट्स हैं, मिस्टेक्स हैं, वो याद आते हैं। तो ऐसे में स्मृतियों से बाहर कैसे निकले, उन्हें कैसे मिटाया जाए, पूछते हैं।
मनोज जी, मैं आपसे सहमत हूँ। बहुत सारे लोगों के और भी ये सवालात हो सकते हैं, तो आई एम एड्रेसिंग नॉट ओनली मनोज जी बट ऑल दोस पीपल हु हैव दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे भारत में एक बहुत पुरानी कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो एक तो हमें अपने आप को खाली नहीं रखना है। फिर मैं भारतीय संस्कृति की तरफ आपको लेके जाऊंगा। 30-40 वर्ष पहले की बात रही होगी, मेरा जन्म मथुरा के पास एक गांव में हुआ। तो मेरी ग्रैंड मदर, दादी जी, मुझे बताया करती थी, बच्चे आप कुछ काम करो। तो कई बार मैं कहता था, दादी जी हमारे पास कुछ काम ही नहीं है, हमने होमवर्क कर लिया, सारा काम कर लिया। तो शी यूज टू टेल मी कि अपना जो आपने शर्ट पहना हुआ है ना, उसके बटन को निकाल दो और फिर दोबारा से लगाओ। माने व्हाट शी वांटेड टू टेल मी दैट वी शुड नेवर एवर सिट आइडल, नंबर वन। और जो दूसरी बात है कि पास्ट जो है वो सदैव बुरा नहीं होता है, मनोज जी ये हमें समझने की जरूरत है। तो पास्ट की बहुत सारी बातें हमारे सामने अच्छी भी हो सकती है। तो मैं मैनेजमेंट में ये सदैव बात बताता हूँ, पास्ट कैन बी अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस बट पास्ट कैन नॉट बी माई रेजिडेंस। तो हम पास्ट की जो अच्छी मेमोरीज हैं, जो पास्ट की बातें हैं, उनसे रेफरेंस जरूर ले लें, लेकिन हम पास्ट में जी नहीं सकते हैं। हमें अपने आप पर वर्क करने की जरूरत है, हमें अपने से पूछने की जरूरत है कि मुझे आगे जाना है या मुझे पीछे जाना है। तो हमारे अंदर से प्रश्न आता है कि मुझे तो आगे जाना है, तो अगर मुझे आगे जाना है तो मुझे पीछे की जो बातें हैं, जिनके बारे में हम कहते हैं रात गई और बात गई, तो उन बातों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतन करने से अब मुझे प्राप्ति होने वाली नहीं है, बट लेसन आई मस्ट लर्न, और वो लेसन को लर्न करके मुझे आगे बढ़ जाना है। थैंक यू वेरी मच।
ये जो बात आपने कही, पास से लेसन लेके आगे बढ़ जाना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी चीज है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि चलो अगर कुछ हो भी जाता है तो वहां पास को पास्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, और आपने कहा कि याद आती है वो बात बुरी नहीं है, अगर वो याद आती है तो उससे लेसन ले और फिर आगे बढ़े। हमारे एक और दोस्त हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, इनका नाम है शशि, शशि भुवनिया नाम है इनका, और शशि जी सवाल पूछते हैं, यूट्यूब से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। कहते हैं, हाउ टू मेक माइंड प्रिपेयर्ड टू गेट पॉजिटिव थॉट्स, अपने मन को हम कैसे तैयार करें पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करने के लिए, पूछती है शशि।
थैंक यू शशि जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। जब मैं 35 वर्ष पहले ब्रह्मा कुमारीज में आया था तो मैंने भी ये सवाल पूछा था। तो हमें बचपन से क्या बताया गया है कि हमने कभी अपने माइंड के साथ बात नहीं की, हमने कभी अपने माइंड को अपना मित्र नहीं बनाया। तो ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत अच्छी बात जो मुझे सीखने को मिली, जो मैं अपने लेक्चर्स में प्राय कहता हूं, कि हमें अपने माइंड को कभी एक तो कंट्रोल नहीं करना फ्रेंड्स, क्योंकि कंट्रोल करने की पॉसिबिलिटी मेरे सामने नहीं है। हमें अपने मन को मारना नहीं है, हमें अपने मन को सुधारना है। हमें अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करना, हमें अपने माइंड को कन्विंस करना है। और माइंड को कन्विंस करने का बेस्ट टाइम है ब्रह्म मुहूर्त, जिसको हम ब्रह्मा कुमारीज में अमृत वेला कहते हैं। तो मैं ब्रह्मा कुमारीज में 35 वर्षों से हूं। मैंने यहाँ का एक मंत्र अपने जीवन में अपनाया है, रात को 10 माने बस और सवेरे 4 माने तैयार। कहते हैं जो सवेरे सूरज को उठाते हैं वो जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल जाते हैं, और जिनको सूरज उठाता है वो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। तो शशि जी को मैं ये बताना चाहूंगा, 4 बजे उठेंगे बहुत अच्छा है। अगर 4 बजे उठने के नाम से उनको तनाव होता है, टेंशन होती है, तो वट एवर टाइम ही गेट्स अप, ही कैन गेट अप हाफ एन आवर अर्ली, और उस आधा घंटे में हम कोई गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गैजेट्स हमारे हाथ में आते ही हमारा मन बहुत वांडर करने लगता है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है। तो कल सवेरे उठ करके शशि जी हम अपने आप से बात करें, हम सेल्फ डायलॉग करें। शॉर्ट में मैं सेल्फ डायलॉग बताना चाहूंगा, अगर आप मुझे देख रहे हैं अभी, अपना हाथ ऐसे कर दें और कहीं एकांत में बैठ जाएं और अपना हाथ पीछे ले जाके अपने आप को बोलेंगे शाबाश, माने हमें अपने चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी का सर्कल क्रिएट करना है। फिर दूसरी बात हम अपने आप को बोलेंगे आई एम ओके, मैं ठीक हूं। तीसरी बात हम बोलेंगे आई एम यूनिक, मैं विशेष हूं। और चौथी बात बोलेंगे वाह मेरा भाग्य वाह। तो आप देखेंगे कि जब हम सेल्फ डायलॉग करते हैं, जिसको हम मेडिटेशन भी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, हम राजयोग भी कह सकते हैं, तो वो राजयोग क्या करता है, जो क्वांटिटी ऑफ थॉट्स है उसको कम करके क्वालिटी ऑफ थॉट्स में चेंज करता है। फिर ब्रह्मा कुमारीज में हमें एक और मंत्र दिया गया है कि एवरी आवर वी स्टॉप जस्ट फॉर 1 मिनट, स्टॉप फॉर ए मिनट। तो जो भी मेरा मन भागा या मैंने अपनी एनर्जी कंज्यूम की, एवरी आवर आई कैन रिचार्ज दैट एनर्जी, एंड दिस रिजल्ट्स इन वट एवर एनर्जी लेवल आई हैड इन द मॉर्निंग, सेम लेवल रिमेन्स ड्यूरिंग डे, सेम लेवल रिमेन्स इन द इवनिंग, एंड यू स्माइल थ्रू आउट द डे एंड यू आर एबल टू कन्विंस योर माइंड। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू पीयूष जी। अगला सवाल हमारे साथ फेसबुक से आ रहा है, फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, ओविनंदन कुंवर नाम है इनका, वो पूछते हैं
अभिनंदन
ऑप्शन, ओविनंदन कुंवर नाम है,
जी 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 जी
और वो सवाल पूछते हैं, मेरे को कोरोना से डर लग रहा है, बुखार भी है, नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा आता है और मैं टेस्ट कराऊंगा जल्दी है, बट व्हाई ऑलवेज बीमारी से लेकर नेगेटिव माइंडसेट क्यों होता है, ये पूछते हैं और कहते हैं कि प्लीज आप इसके लिए गाइड करें। और इसमें वो थोड़ा सा एडिशन करते हैं, वो कहते हैं मैं बीमारी से ज्यादा टेंशन ले लेता हूँ, ऐसा क्यों होता है और नेगेटिव क्यों आता है मेरे मन में, क्या करें इसके लिए, पूछते हैं।
थैंक यू अभिनंदन जी, ये बहुत ही कॉमन प्रश्न आपने पूछा है, और आपके बहाने मैं समझता हूं कि हजारों दूसरे हमारे श्रोताओं को भी जरूर लाभ होगा। इनफैक्ट आज क्या हो गया है कि हमारे देश के समझिए आज 130 140 करोड़ लोग हैं, तो सवेरे उठते ही वो व्हाट्सएप पर जाते हैं तो वहां न्यूज आती है कि दिल्ली में इतने सारे लोग मर गए, इतने सारे लोग संक्रमित पाए गए। फिर उन्होंने टीवी अपना ऑन किया, टीवी में भी वही कहानी है, सारी ब्रेकिंग न्यूज वही है। फिर उन्होंने समाचार पत्र देखा, न्यूज़पेपर देखा, सेम स्टोरीज देयर, एंड द स्टोरी डज नॉट एंड हेयर। फिर मैं जिसको फोन कर रहा हूँ या मेरे पास कोई फोन आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, आपको पता है कितने सारे लोग मुंबई में आज मर गए हैं, कितने सारे लोग इन्फेक्टेड। तो आप सोचिए मेरे मित्र अभिनंदन जी, कि अगर इस देश के 140 करोड़ लोग सवेरे से लेकर शाम तक ये लो एनर्जी क्रिएट करेंगे, तो हमारी, जैसे ही हम लो एनर्जी क्रिएट करते हैं, तो हमारी बॉडी और हमारी सोल की जो इम्यूनिटी है, दैट ऑल्सो बिकम्स लो। माने हम कोरोना को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, जैसे मैंने पहले भी ये जवाब दिया कि थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को गैजेट से दूर रखें, हम अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन, प्रेयर, ध्यान, प्रार्थना के साथ करेंगे। और ये काउंट करना, इतनी डेथ हो गई, इतने सारे संक्रमित हो गए, वो मेरा काम नहीं है, वो काम हमारे डॉक्टर्स बखूबी कर रहे हैं, नर्स कर रही हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ कर रहा है, हमारे पुलिस वाले कर रहे हैं, जिनको हम कोरोना योद्धा के रूप में जानते हैं, उनको हम बार बार नमन करते हैं, उनको हमारी बहुत अच्छी शुभकामनाएं हैं, दे शुड डू देयर वर्क। बट वॉट इज माई जॉब? अभिनंदन जी, मेरा जॉब ये है कि सवेरे उठ करके मुझे अपने आप को बोलना है, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। और ये केवल मुख से नहीं बोलना, लेकिन इस बात को आपको मन से स्वीकार कर लेना है। जब हम किसी बात को मन से स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर वो जो बात जो हम कह रहे हैं वो संभव होती है। एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट किया गया, 50 बेड थे और वो आईसीयू वार्ड था। आप सोच सकते हैं आईसीयू वार्ड में कौन से पेशेंट को रखा जाता है। तो चूंकि एक्सपेरिमेंट था, एक माइक लिया गया और घोषणा करा दी गई, अनाउंसमेंट करा दिया गया, अगले 5 मिनट में आईसीयू वार्ड में बहुत पावरफुल बम फटने वाला है। उन्नीकृष्णन जी, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अगले 2-3 मिनट में 50 के 50 रोगी अपने बेड से उठकर सड़क पर पहुंच गए। तो सारी बीमारी यहां पर है, और उस बीमारी को एनकाउंटर करने के लिए हमें अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी, और पॉजिटिव एनर्जी का ओनली सोर्स इज मेडिटेशन। तो आप कुछ मिनटों के लिए मेडिटेट करेंगे तो आप जरूर, आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, और आप सदैव अपने आप को बताइए, आपको कोरोना नहीं होगा, आप स्वस्थ हैं, यू आर ओके, थैंक यू वेरी मच।
जी, अगला प्रश्न हमारे साथ त्वरिता पूछते हैं फेसबुक से। वो कहते
कौन
हैं,
है ये
वो
नाम?
त्वरिता, त्वरिता नाम,
जी, बताइए।
त्वरिता जी पूछते हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली राजयोग मेडिटेशन एंड हाउ डज इट इंक्रीज द एबिलिटी टू फेस। अगर आप राजयोग मेडिटेशन क्या है ये पूछते हैं, और ये किसी भी चीज को सामना करने की हमारी एबिलिटी को कैसे इंक्रीज करता है पूछते हैं।
राजयोग जो शब्द है, योग शब्द जो है वो संस्कृत से निकला है। बेसिकली योग माने जोड़, कम्युनियन, कनेक्शन, रिलेशनशिप। जैसे मैं समझिए, कई बार मेरे सामने होता है कि मैं फोन उठा के, अपने एक मित्र हैं विनोद जी, उनको मैं फोन करने ही वाला था कि उनका फोन आ गया। मैं कहता हूँ, विनोद जी क्या समय का संयोग है, क्या योग है कि मैं आपको इधर से फोन लगा रहा था, आप मुझे उधर से फोन लगा रहे हैं। तो ये यहां मेरा योग हुआ विनोद जी के पास, माने ह्यूमन टू ह्यूमन। लेकिन जब हम राजयोग कहते हैं, इसको मेडिटेशन कहते हैं, तो ये योग है परमात्मा के साथ। तो परमात्मा क्या है? वो सारी एनर्जी, सारी पावर, सारी शक्ति का रिजर्वॉयर है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं कि अगर हम हिटलर को याद करें, तो हमारे मन में कौन सी एनर्जी आती है? हेट। हमारे मन में दूसरों को किल करना। इफ आई रिमेम्बर महात्मा गांधी, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी आई क्रिएट इन माई माइंड? कंपैशन, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, कमिटमेंट। तो जैसे ही हम परमात्मा को, जिस रूप में भी आप याद करते हैं, अगर आप परमात्मा से अपने आप को अटैच करते हैं, तो तुरंत एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती है। हम सब जानते हैं एनर्जी का लॉ क्या है, वो हाई लेवल से लो लेवल पर आती है। तो परमात्मा का लेवल इज वेरी 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 हाई। और जैसे ही मैंने सच्चे मन से उनको याद किया, उनके साथ रिलेशनशिप बना के याद किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। मैं लोधी रोड में रहता हूं, जोर बाग से एक माता जी यहाँ आती है। जोर बाग इज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉश लोकेलिटीज इन एशिया। तो वो कहती है, पीयूष भाई साहब, मैं पिछले 5 वर्षों से मंदिर जा रही हूं लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मैंने कहा, माता जी कैसे मिलेगी? आप जब भी मंदिर गए, आप अपने मन को बाहर छोड़ के चले गए, आपका शरीर अंदर गया। तो मैंने कहा, माता जी आप जब भी मंदिर जाएं तो मन सहित जाइए, क्योंकि मन को शक्ति चाहिए। तो मेडिटेशन भी क्या है? मन मनाभव, अर्जुन ने गीता में कहा है, अर्जुन को बताया गया है, मन मनाभव माने थ्रू माइंड आई हैव टू मेडिटेट। और जो मेडिटेशन शब्द है वो भी मैडरी से बना है, लैटिन वर्ड, और उसका अर्थ है टू हील। तो जब हम मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन इज नथिंग लाइक आई रिमेम्बर माई फादर दो ही इज नॉट इन दिस वर्ल्ड। तो वो जो मेरे फादर हैं, ही इज फादर ऑफ दी ही वॉज फादर ऑफ दी हार्डवेयर, लेकिन एक और चीज है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का फादर कौन है? जिसको कहते हैं सबका मालिक एक, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो वो भाई भाई का नाता कैसे है? व्हेन आई कंसीडर माई सेल्फ एज ए सोल, और जब हम सोल समझते हैं तो वी गो बियॉन्ड ऑल द रिलीजन्स, ऑल द कम्युनिटीज, ऑल द कास्ट, एवरीथिंग। तो जैसे ही हम मेडिटेट करने लग पड़ते हैं तो हमें तुरंत एनर्जी मिलने लगती है, और जब हमारी एनर्जी यहाँ हाई होती है लाइक आई फ्लाई, तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो नीचे रह जाती हैं और मुझे उनको सामना करना, उनको फेस करना बहुत इजी हो जाता है। बाकी डिटेल कोर्स के लिए आप हमारा जो भी brahmakumaris.com विजिट करके यू कैन टॉक टू द पीपल देयर, दे कैन गाइड यू मोर। थैंक यू वेरी मच।
अगला प्रश्न हमारे साथ आराध्या दवे हैं, और आराध्या हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हैं। वो कहते हैं, मेरे माइंड में हर वक्त नेगेटिव थॉट्स आते हैं क्योंकि घर में हमेशा ऐसा माहौल रहता है, हर वक्त सास से बहस चल रही होती है। प्लीज मैं कैसे परिवार में अच्छा माहौल रखूं? मैं डिप्रेशन से गुजर रही हूँ, प्लीज मुझे सोल्यूशन दीजिए, ऐसा आराध्या पूछते हैं।
थैंक यू आराध्या जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, बिकॉज आपका नाम और अभिषेक बच्चन की बेटी और अमिताभ बच्चन की बेटी का नाम भी आराध्या है। तो मैंने आपको आराध्या जी कभी देखा नहीं, लेकिन जो आराध्या जो बच्ची है, आराध्या बच्चन, वो जैसे हरदम मुस्कराती है, तो मेरे सामने भी वो आपका मुस्कराता हुआ चेहरा आ रहा है। अब आपको अपने आप से बात करने की जरूरत है। आपने बहुत सारे टाइम अपनी सास से आर्ग्यूमेंट करके देख लिया, अब आप आज से क्या करिए, हर दिन सवेरे उठ करके अपनी मदर इन लॉ की एक खूबी अपनी डायरी में नोट करें। नेक्स्ट डे फिर उनकी कोई ना कोई विशेषता अपनी डायरी में नोट करेंगे। तो एक तो हमें उनकी विशेषताओं को नोट करना है, कमियों को देखने से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। सेकंड पॉइंट, एक्सेप्टेंस, स्वीकारोक्ति, कि मेरे सास ऐसे ही हैं, तो अब वो ऐसे हैं तो मुझे उनके साथ एडजस्ट करके चलना है। कोई भी व्यक्ति खराब नहीं है। आजकल मेरे पास फोन आता है, मैं किसी को फोन करता हूं तो बार बार ये रिकॉर्डेड मैसेज बजता है कि आप बीमारी से घृणा करिए लेकिन बीमार से नहीं, पाप से घृणा करिए लेकिन पापी से नहीं। तो कभी भी आप अपनी सास के लिए कोई भी मन में ऐसी वैसी बात न रखें, केवल वो उनका रोल है। वो तो बहुत अच्छी है लेकिन कोई ना कोई आपका हिसाब किताब उनके साथ है, इसलिए वो आपकी सास बनी है। अब उसको चुकतू करने के, सेटल करने के दो तरीके हैं, कि आप आर्ग्यूमेंट कर रही हैं माने आपका अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। अगर आप शांत हो गई हैं तो आपका अकाउंट सेटल हो रहा है। अब आप आराध्या जी अपने आप से पूछिए कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है। हालांकि शांत होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शांत होने के अलावा और कोई हमारे सामने ऑप्शन नहीं है। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है जो मैं सास के सामने रखूं, तो जब वो शांत होती हैं, जब वो रिसेप्टिव मूड में होती हैं, तो बहुत सभ्यता से अपनी बात आप उनके सामने रखें तो जरूर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी जो नेगेटिव वाइब्रेशंस बने हुए हैं वो पॉजिटिव में बदल जाएंगे और आपका घर घर नहीं रहेगा, मंदिर हो जाएगा। माय ऑल द बेस्ट, थैंक यू
जी। अगला प्रश्न हमारे साथ इससे ही मिलता जुलता प्रश्न है। सची पारीख हैं जो यूट्यूब से जुड़े हैं, वो कहते हैं, विद फ्रेंड्स एंड फैमिली इफ वी आर गेटिंग कॉन्फ्लिक्ट इन टॉकिंग फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जब हम बातचीत करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं या हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज में कॉन्फ्लिक्ट आता है एंड देन द एनवायरमेंट एट दैट टाइम बिकम्स नेगेटिव. हाउ टू डील विद पीपल इन दैट सिचुएशन? इज इट ओके टू स्टॉप टॉकिंग? उस घड़ी में बात करना छोड़ दूं तो चलेगा? क्योंकि वहां वातावरण नेगेटिव हो गया है, तो ऐसे समय पर मैं लोगों से कैसे डील करूं, ये पूछते हैं.
ये प्रश्न काफी पहले वाले प्रश्न से मिलता जुलता है, तो मैं बताना चाहूंगा कि आज सारी दुनिया की पॉपुलेशन करीब 760 करोड़ है, भारत की जनसंख्या करीब 140 करोड़ है. तो आप देखिए कि कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं है, कोई भी दो उंगलियों के निशान एक जैसे नहीं है, कोई भी दो डीएनए एक जैसे नहीं है. तो सबसे पहले भाई साहब हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जो मेरी थिंकिंग है वो मेरे स्पाउस की, मेरे पेरेंट्स की, मेरे ब्रदर्स की, मेरे सिस्टर्स की नहीं हो सकती है. हर एक का थिंकिंग लेवल अलग अलग है. यहां तक कि जो दो जुड़वा बच्चे होते हैं, ट्विंस होते हैं, ये देखा गया है कि उनकी भी सोच बिल्कुल अलग अलग है. होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक वैरायटी नहीं होगी तब तक हम अपनी जिंदगी में आनंद नहीं ले सकते हैं. तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ एडजस्टमेंट करना है, समायोजन करना है. तो हमें देखना है कि जब भी कोई आर्ग्यूमेंट हीटेड आर्ग्यूमेंट बन जाता है तो उसमें से किसी न किसी एक व्यक्ति को शांत होने की जरूरत है. और हम भारतीय संस्कृति में कहते हैं शांत होना ही संत होना है. शांत होना मेरी कमजोरी नहीं है, इट्स माई स्ट्रेंथ, इट्स माई पावर. तो उस टाइम पर अगर हम शांत हो जाएंगे, उस टाइम पर उस आर्ग्यूमेंट को हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, और फिर कभी राइट टाइम देखकर, राइट सिचुएशन को देखकर अगर हम अपनी बात रखेंगे तो संभावनाएं हैं कि हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट हो रही है वो सकारात्मक ऊर्जा हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम्स जरूर जरूर हल हो जाएंगी. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, धन्यवाद
जी. अगला प्रश्न है हमारे साथ डॉक्टर स्नेहा पूछते हैं और ये YouTube से हमारे साथ जुड़े हैं. पूछते हैं हाउ टू इंक्रीज डिसीजन मेकिंग पावर एंड कैन चूज करेक्ट ऑप्शन विदाउट गेटिंग कंफ्यूज. जब ऑप्शंस होते हैं तो कंफ्यूजन होना सहज है, तो ये पूछते हैं कि हम अपने निर्णय शक्ति को कैसे बढ़ाएं और सही ऑप्शन हम कैसे चुने कंफ्यूजन के बिना, ये पूछते हैं डॉक्टर स्नेहा.
थैंक यू डॉक्टर स्नेहा जी. एक तो आपका नाम इतना सुंदर है, तो स्नेह माने आप तो जरूर सबको स्नेह करते होंगे, और सबसे पहले आपको अपने आप को स्नेह करना है. लव योरसेल्फ, और लव योरसेल्फ को ही हम मेडिटेट करना कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं. तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने की एकमात्र विधि है मेडिटेशन. क्योंकि आज ये देखा गया है कि एक एवरेज व्यक्ति 40-50 हजार थॉट्स एक दिन में क्रिएट करता है. तो स्नेहा जी आप सोच सकती हैं कि हमारे यहाँ कितना हैवी ट्रैफिक ऑफ थॉट्स डे इन एंड डे आउट चल रहा है. जैसे मैं जिस हॉल में बैठा हुआ हूं इसकी कैपेसिटी समझिए 50 कुर्सियों की है, और अगर मैं इसमें 60 कुर्सियां लगा दूं तो क्या होगा, कंफ्यूजन एंड केओस. तो मेरे मन में भी क्या हो रहा है, बिकॉज माई माइंड इज ऑलवेज ऑन अ रन, तो इसलिए मेरा मन ऑलवेज कंफ्यूज है, ऑलवेज इन ए केओटिक कंडीशन. इसलिए मैं राइट टाइम पर राइट डिसीजंस नहीं ले पा रहा हूं. अब इसकी विधि क्या है कि जो 40-50 हजार थॉट्स हमें चल रहे हैं उसको हम 30 हजार पर ले आए, 20 पर ले आए, 15 पर ले आए, 10 पर ले आए, तो जितनी थॉट्स की हमारी क्वांटिटी कम होगी तो थॉट्स की क्वालिटी अपने आप बढ़ेगी. और क्वालिटी ऑफ थॉट्स माने क्वालिटी ऑफ लाइफ. इसलिए कहते हैं जैसा चिंतन वैसा जीवन, व्हाट यू आर व्हाट यू थिंक. तो जैसे जैसे आपके थॉट्स की क्वालिटी बढ़ती जाएगी तो एक तो आप राइट टाइम पर राइट डिसीजंस लेंगी, और फिर बहुत सारी चॉइसेस में से भी आप राइट चॉइस को चूज कर सकेंगी. मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, लेकिन अभी चूंकि ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं आपको ब्रीफ में यही बताना चाहूंगा कि आप हर दिन मेडिटेट करिए, और जो बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो थॉट्स का यहाँ चल रहा है उसको थोड़ा कम करिए. जैसे ही वो कम होगा तो आपकी डिसीजनिंग पावर, निर्णय शक्ति आपसे आप बढ़ जाएगी. आपको सफलता की शुभकामनाएं
जी. अगला प्रश्न पमेला जी पूछते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स में बच्चों को इन्वॉल्व होने से कैसे बचाएं? अगर पर्पसफुली कोई बच्चों को इन्वॉल्व कराए, उससे कैसे बच्चों को बचाया जा सकता है? काइंडली गाइड अस। ऐसा ही एक मिलता जुलता सवाल है बच्चों के बारे में ही, तो वो कहते हैं कि हाउ टू मेक चिल्ड्रन मोर फोकस्ड एंड स्पिरिचुअल, ऐसा विवेक गुप्ता जी पूछते हैं।
ओके, मैं पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं कि बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट में न ला जाए। अब मुझे पता नहीं है कि बच्चों की आयु कितनी है, शी इज नॉट मेंशन द एज ऑफ द चिल्ड्रन, यू नो। तो अगर बच्चे ग्रोन अप हैं तो मुझे समझता है कि बच्चों को उसमें हमें शामिल करने में कोई मुश्किलात भी नहीं होनी चाहिए। और कई बारी बच्चों की जो राय होती है उससे हमारे घर के कॉन्फ्लिक्ट समाप्त भी हो जाते हैं, क्योंकि आपके घर में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप बच्चों से कब तक उस के बचाएंगे अपने आप को? और आप एक दो तरह की जिंदगी जिएंगे, बच्चों के सामने कुछ और हैं, अपने स्पाउस के सामने कुछ और हैं। तो मुझे ये लगता है कि लेट मी बी ओपन। अगर बच्चे हमारे मैच्योर्ड हैं, अगर बच्चे हमारे ग्रोन अप हैं, तो हम उनसे भी राय लें, हम अपने स्पाउस के साथ भी बैठें, एंड लेट अस कम टू द प्रॉब्लम कि हमारी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। तो कई बारी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत छोटी छोटी बातों पर होता है, तो अगर हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और बच्चे भी कई बारी, मैंने देखा है आजकल दिल्ली में, मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ लोधी रोड पर रहता हूँ, हमारा सेंटर यहाँ है, तो एक बारी मैंने देखा कि गाड़ी एक जा रही थी, तो जो जो उनके पेरेंट्स हैं उन्होंने कुछ खाया और वो तुरंत अपनी जो शीशा खोल के गाड़ी का उसे बाहर फेंकने वाले थे, तो तुरंत उन्होंने बच्चों को रुका। बच्चे ने कहा, पापा नहीं, ये बाहर नहीं फेंकना है, आपको पता नहीं है मोदी जी का सफाई अभियान चल रहा है। तो कई बारी छोटे छोटे बच्चे हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं, तो हम ये ना समझें कि हमें बच्चों को इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि बच्चों को इन्वॉल्व करने से शायद आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। और दूसरा प्रश्न क्या था, मुझे दोबारा बताना चाहेंगे? व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन गुप्ता
सेकेंड
जी
क्वेश्चन
का?
विवेक गुप्ता जी पूछ रहे थे प्रश्न, और वो
जी
कहते हैं कि बच्चों के अंदर स्पिरिचुअलिटी कैसे ले आया जाए और बच्चों को फोकस्ड कैसे किया जा सकता है ज्यादा।
सबसे पहली बात तो यह है कि स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट बी टॉट। इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई विश्वविद्यालय नहीं है। जैसे मैं जहां पर हूं, तो हमारी जो क्लास चलती है, वी कॉल इट बॉर्डिंग क्लास, आजकल वो वर्चुअल क्लास हो रही है, तो उसमें चार जनरेशंस एक साथ, जिनको हम मुरली कहते हैं, गॉडली वर्सन्स कहते हैं, वो चार जनरेशंस एक साथ सुनती हैं। वहां ग्रेट ग्रैंड मदर हैं, दादी माँ हैं, उनकी माँ भी है, और वो छोटी बच्ची है। उस बच्ची की एज अभी हार्डली 3-4 साल रही होगी। तो एक बारी उस बच्ची की मदर ने मुझे पूछा, भाई साहब ये तो कुछ समझती नहीं है, अब इसको हमें मतलब मुरली में या तो इन अच्छी बातों में बिठाने का क्या पर्पज है? तो मैंने उनको बताया कि हो सकता है अब ये नहीं समझती है, लेकिन बच्चे का दिमाग जो है वो क्लीन स्लेट है, और जब बच्ची बड़ी होगी तो कोई भी प्रॉब्लम इसके सामने आएगी तो ये तुरंत इस नॉलेज को कोरिलेट कर लेगी। तो इसलिए बच्चों को कोई भी बात हमें सिखानी है तो हमें अपनी लाइफ से सिखानी पड़ेगी। जैसे मेरे पेरेंट्स ने, वो ब्रह्मा कुमारीज में नहीं थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स को मैंने देखा, वो सवेरे ऑलवेज दे आर अप एट 4 o'clock, और सभी हम बच्चों को स्नान करके पिताजी हमें रामायण या गीता सुनाया करते थे। तो कई बारी दिसंबर का भी महीना होता था, वो एक बारी दो बारी हमें वार्निंग देते थे। तो धीरे धीरे मैंने देखा वो हमारा संस्कार बन गया। अब मैं ब्रह्मा कुमारीज में आया तो मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि 4 बजे उठने के संस्कार मेरे पहले से थे। तो संस्कारों को जो देना है हमें, वो अपनी रियल लाइफ से दे सकते हैं। इट्स नॉट बाई टॉक, इट्स बाई योर रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो जरूर बच्चे स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, और आपके बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं। हर बच्चा अच्छा ही होता है, और वो बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।
जी थैंक यू। बच्चों के लिए तो बहुत सारे लोग कंसर्न होते हैं और लोग चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी परवरिश मिले, वो कुछ पॉजिटिव सीखे, और ये अच्छा गाइडेंस है कि उन्हें एक्सपोजर देना जरूरी है, सिखाया नहीं जा सकता स्पिरिचुअलिटी। अगला प्रश्न हमारे एक दोस्त पूछते हैं, जितेंद्र कुमार फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं। वो कहते हैं, आई ऑलवेज फील गिल्टी, व्हाई आई डू नॉट नो। तो जितेंद्र जी के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे?
शायद जितेंद्र जी का मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग उनके मन में हो रही है, होती रहती है, और वो बचपन से जिस परवरिश में, जिस माहौल में उनकी परवरिश हुई है, पालना हुई है, तो वहां शायद ऐसा कोई माहौल बना रहा होगा, मुझे पता नहीं है, वो उन्होंने बहुत स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उस माहौल को अब हम पीछे भी छोड़ सकते हैं, हम अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकते हैं जितेंद्र जी। तो गिल्टी फीलने के लिए भी, फील करने के लिए भी हम ब्रह्मा कुमारीज में कहते हैं कि देयर शुड बी ए लिमिट, हम कब तक पश्चाताप करते रहेंगे। तो अगर हमसे कोई भूल हुई, कोई गलती हुई, हम उसको रियलाइज करें, हम लेसन को सीख लें, उस गलती को हम रिपीट न करें, उस गलती को बार बार न दोहराएं, और हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। हमारी जो फाउंडिंग मदर थी ब्रह्मा कुमारीज की, जिनको हम बहुत प्यार से मम्मा कहा करते थे, मातेश्वरी, उनका महीना पिछले ही महीने जून महीने में गुजरा। तो हमने अपने क्लासेस में मैंने बताया कि मम्मा एक साधारण परिवार से आई और वो मम्मा कैसे बन गई, उन्होंने इतनी बड़ी पोजीशन कैसे ले ली। तो उसमें बहुत ज्यादा योगदान इस बात का रहा कि उन्होंने कभी किसी भूल की पुनरावृत्ति नहीं की, शी नेवर एवर रिपीटेड एनी मिस्टेक। तो आप जो बार बार गिल्टी फील करते हैं, आप अपने टाइम को नष्ट कर रहे हैं। चलो कोई गलती भी हुई, उसको अंदर से रियलाइज करें और फिर हम आगे बढ़ जाएं। तो मैंने देखा है कि उससे हमने सबक भी सीख लिया, और हम अपनी लाइफ में चूंकि पीछे तो नहीं जाना चाहते, हम आगे जाना चाहते हैं, तो हम आगे अपनी लाइफ में चलते चले जाएंगे। मुझे कैनेडी का एक बहुत सुंदर वाक्य यहाँ पर याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि मेरा बड़प्पन इसमें नहीं कि मैं कभी गिरा नहीं, लेकिन मेरा बड़प्पन इसमें है कि हर बारी गिर करके मैं ऊंचा उठ गया, माने मैंने हर अपनी मिस्टेक से सीख लिया और मैं आगे बढ़ गया। धन्यवाद।
जी, अगला प्रश्न हमारे साथ ज्योति पूछते हैं, फेसबुक से वो हमारे साथ जुड़े हैं। वो कहते हैं कि समथिंग इज हैपेंड रॉन्ग विद अस एंड दैट पर्सन पर्पसफुली डिस्टर्ब्स अस एंड आवर फैमिली लाइफ एंड आल्सो इन्वॉल्व्स आवर चिल्ड्रन, देन व्हाट शुड वी डू एंड चिल्ड्रन आल्सो फील नर्वस, प्लीज गाइड मी, ऐसा वो कहते हैं।
जी, एक तो ये कहना कि हमारे साथ कुछ रॉन्ग हुआ है, मैं समझता हूँ ब्रह्मा कुमारीज में हम कहते हैं कि किसी के साथ कुछ भी रॉन्ग नहीं होता है, ये केवल हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। इसलिए वो आपके पड़ोसी बने हैं, इसलिए वो आपके नेबर बने हैं। आई गिव एन एग्जाम्पल, हम सब जानते हैं कि जब ताज होटल मुंबई में अटैक हुआ, आतंकवादियों ने अटैक किया, तो वहां हजारों लोग उस टाइम पर थे, कई सारे लोग बाहर थे। जब वहां पर गोलियां चली तो वो अपने कमरों में चले गए, वो बच गए, लेकिन कई सारे लोग अपने कमरे में थे, वो बाहर आ गए, उनको गोली लग गई, वो मर गए। तो सबसे पहले ये जो कार्मिक अकाउंट है वो उसको हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज बिना किसी कारण के नहीं होती है, हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण है, हमारा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट उनके साथ है। लेकिन अब इसको कह के हम ये नहीं कह सकते कि हम सहनी करते रहें, जरूर हम अपनी जो प्रॉब्लम है, जो हमारे नेवर हमारे साथ क्रिएट कर रहे हैं, तो हम उनके साथ बैठें, अपनी बात हम उनके साथ बताएं, लेकिन वो हीटेड आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बहुत दिनों से सहन कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, तो जैसे ही उस व्यक्ति को हम सामने देखते हैं तो हमारे मन में बहुत निगेटिव बातें, बहुत गलत बातें, तो फिर वो ही हमारे अंदर से निकल पड़ता है, तो वो किसी समस्या का समाधान नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो किसी तीसरे व्यक्ति को, जो आपके भी सिंपैथाइजर हैं, जो उनके भी हितैषी हैं, उनको बिठा करके अगर आप समस्या का समाधान करेंगे विद गुड यू नो वाइब्रेशंस, विद अच्छे वाइब्रेशंस उस आत्मा के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति खराब नहीं है, केवल उस उसका रोल ऐसा वो प्ले कर रहा है, तो रोल तो कभी भी किसी का चेंज हो सकता है, तो जरूर वो पड़ोसी जो है आपके बदल जाएंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद आपका।
जी, थैंक यू पीयूष भाई, बहुत ही अच्छा उत्तर आपने दिया कि ये चीज ऐसी होती है। अब एक वर्क प्लेस रिलेटेड प्रश्न है जो सूर्या जी पूछते हैं, सूर्या रावत नाम है, फेसबुक से ये हमारे साथ लाइव जुड़े। वो कहते हैं, इन माय डॉटर्स ऑफिस नोबडी बिहेव्स विद हर इन गुड गुड वे एंड हाउ शुड शी डील विथ हर ऑफिस स्टाफ, प्लीज एडवाइज। और उन्होंने आगे इस बात को बढ़ाते हुए ये कहा है कि उनके काम को भी अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उनके कैपेसिटी के हिसाब से उनको काम अलॉट नहीं किया जाता और इसकी वजह से वो बहुत बुरा महसूस करती हैं और नर्वस फील करती हैं, ऐसा वो पूछते हैं।
जी पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर उस ऑफिस में सारे लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं गलती उस जो आपकी बेटी हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जिसके कारण सारे लोग। तो सबसे पहले रावत जी, आपको अपनी बिटिया के साथ बैठने की जरूरत है कि कहीं उसकी जो व्यवहार है, जो काम करने का तरीका है, वो कहीं सोशल बहुत ज्यादा नहीं है। तो एक तो हमें इसको समझने की जरूरत है, और जब आप इस बात को समझ लेंगे और जब आप उनको गाइड करेंगे तो जरूर ऑफिस के लोग जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और जो प्रश्न का दूसरा हिस्सा आपने मुझसे पूछा है कि उनको ठीक से काम नहीं दिया जाता, उनके साथ सभी लोग ऐसा वैसा व्यवहार करते हैं, तो अगर सचमुच आपको ऐसा लगता है कि काम उसको ठीक से नहीं मिल रहा है, उसको हैरेसमेंट हो रहा है और वो बहुत ज्यादा अभी हो गया है, तो ऑप्शन नंबर वन हमारे सामने ये है कि हम अपना ऑफिस बदल सकते हैं। लेकिन फिर एक बात आती है, हमारी दादी जी जो ब्रह्मा कुमारी की चीफ हैं वर्तमान समय, दादी गुलजार जी जिनको हम कहते हैं, दादी हृदय मोहिनी जी जी भी उनका नाम है, वो हमें बहुत समय से ये बात पढ़ाते आ रहे हैं कि अगर हम एग्जामिनेशन हॉल को बदली कर देंगे तो हम एग्जाम देने से नहीं बच सकते हैं। तो कई बारी जो हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे अंदर जो जो प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको देखना नहीं चाहते, हम उनको बदलना नहीं चाहते। तो यदि ऑफिस के सारे लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई मेरे अंदर ऐसी बात है। तो अगर मैं उस बात को पहचान करके अपने आप को ठीक करूंगा तो आपके ऑफिस के लोग बहुत फ्रेंडली हो जाएंगे आपके साथ, आपको अच्छा काम मिलेगा और आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस भी मिलेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, धन्यवाद।
जी, आप अभी थोड़ी देर पहले कर्मों के बारे में बता रहे थे पीयूष जी, और इससे
जी
मिलते जुलते दो प्रश्न हैं। एक तो डॉक्टर स्नेहा हैं जो ये कहते हैं कि कर्मों का हिसाब किताब खत्म हुआ, ये कैसे समझ में आए और उन्हें कैसे खत्म करें। और इससे मिलता जुलता एक और प्रश्न हमारे पास ईमेल में आया है। ऐसे कुछ प्राइवेट क्वेश्चंस होते हैं जो लोग हमें ईमेल कर सकते हैं social media@brahmakumaris.com पर, जहां पर उनका नाम गुप्त रखा जा सकता है। वो कहते हैं कि हमें कैसे पता चले कि जिनके साथ, जिन लोगों के साथ हमारे संबंध संपर्क हैं, जिनके साथ हम रिलेशनशिप में आते हैं, उनके साथ हमारे पिछले जो कर्मों का अकाउंट है वो चुकतु हो रहा है, वो सेटल हो रहा है, हम नया अकाउंट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ये हमें कैसे पता चले, ये पूछते हैं।
मैं समझता हूं ये दोनों ही प्रश्न मिलते जुलते हैं। तो इसका समझने का एक तरीका, बहुत अच्छा तरीका और बहुत सिंपल तरीका ये है कि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, हमें मिलकर के उससे खुशी होती है, हम चाहते हैं कि हम ज्यादा टाइम इनके साथ बैठें और ये 5 मिनट 10 मिनट बैठे, माने मेरा उनके साथ कार्मिक अकाउंट कोई उस तरह का नहीं है, अच्छे कर्म है हमारे, हमारी वेवलेंथ मिलती है। लेकिन कई सारे व्यक्तियों का नाम मेरे सामने आते ही, उनका फोन सामने देखते ही, उनके बारे में कोई भी बात मेरे सामने करता है तो मेरा एकदम से माथा गर्म हो जाता है, माने मेरा कोई बहुत तगड़ा कर्मों का हिसाब किताब उनके साथ है। अब दोनों ही प्रश्नों में ये बात पूछी गई है तो मैं उनका सामूहिक उत्तर दे रहा हूं कि कर्मों का हिसाब किताब है तो उसको चुकतू करने के दो तरीके हैं। हमें ब्रह्मा कुमारीज में पढ़ाया गया है कि या तो हम योग से चुकतू कर सकते हैं या तो हम भोग से चुकतू कर सकते हैं। तो योग माने मेडिटेशन जब हम करते हैं तो परमात्मा से पॉजिटिव एनर्जी लेकर के हम उन सब आत्माओं को दे रहे हैं। तो उस पॉजिटिव एनर्जी से क्या होता है कि जो भी कोई कार्मिक अकाउंट ऐसे मेरे हैं तो वो कहीं ना कहीं सेटल होते हैं, उनका प्रभाव कम होता जाता है। दूसरा फिर जैसे मैंने बताया भोग के द्वारा, तो भोग जो है वो तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं और आपको पता है उसका तो कोई एंड नहीं है। मैं बहुत बार ये बात बताता हूं कि जब मैं अपनी MBA परस्यू कर रहा था तो मैं एक रिमोट विलेज में गया, कोई केस स्टडी थी वहां पर, तो मुझे बताया गया कि एक एक बीघा जमीन के लिए एक परिवार में झगड़ा हो गया। और मुझे बताया गया भाई साहब 5 वर्ष हो गए हैं, पांच मौतें हो गई हैं और अभी भी मामला एज इट इज है। तो कई बारी क्या होता है कि उसको हम हमारे जो कर्म हैं, इंस्टेड ऑफ सेटलिंग देम बी कीप देम मल्टीप्लाइंग। तो हमें कभी भी अपने कर्मों का खाता जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करना है। हम झुक जाएं, हम नम्र बन जाएं, हम उस रास्ते से हट जाएं। हमारे पूर्व ब्रह्मा कुमारी के मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी हमें बताया करते थे कि हारमनी का अर्थ क्या है। मैंने हार मान ली, सामने वाले की जीत हो गई। उसका ईगो थोड़ा सा, मैंने उस ईगो को उस टाइम पर शांत कर दिया, तो आप देखेंगे बात सदा सदा के लिए बन जाती है। लेकिन उस टाइम पर हार मनी, उस टाइम पर हार स्वीकार कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप मेडिटेट करेंगी तो जरूर ये शक्ति आपके अंदर आएगी और आपके कार्मिक अकाउंट सेटल होते जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।
अगला प्रश्न हमारे साथ प्रशांत कुमार पूछते हैं और प्रशांत जी यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं, क्षमा करें। वो लिखते हैं, हाय माय नेम इज पवन, ओम शांति। हाउ डू यू टॉक टू योर कंजर्वेटिव पेरेंट्स अबाउट प्लान्स ऑफ योर प्लान्स ऑफ लाइफ। वो कहते हैं कि अगर आपके माता पिता थोड़े कंजर्वेटिव नेचर के हैं तो उनसे हम अपने फ्यूचर लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ के प्लान्स के बारे में कैसे बात करें, ये पूछते हैं।
जी देखिए, मेरे पिताजी ही वॉज इन ए विलेज जो मथुरा से बिल्कुल रिमोट में है। तो जब जब मैंने अपने पिताजी को बताया कि पिताजी मुझे पढ़ना है, मुझे MBA करना है, मैं आई वॉन्ट टू बिकम सो एंड सो, तो पिताजी को इतनी खुशी हुआ करती थी। शायद वो उस टाइम MBA का अर्थ भी नहीं जानते होंगे, दो वो अंग्रेजों के जमाने में 10वीं क्लास पढ़े हुए थे, लेकिन उनको आजकल की जो बातें हैं वो सब इतनी ज्यादा पता नहीं थी। तो मैं ये समझता हूं कि पिताजी के लिए कंजर्वेटिव शब्द भी इस्तेमाल करना बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे लिए पिताजी ने क्या क्या नहीं किया है। हम ये कह सकते हैं कि पिताजी के विचार थोड़े उस तरह के हैं, लेकिन कोई भी पिता, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी पिता अपने बच्चे को आगे बढ़ता देखकर खुश न हो असंभव। तो प्रशांत जी, आप बिल्कुल भी मन में ये बात न रखें, पिताजी को बताएं और पिताजी को उनकी भाषा में बताएं। कई बार क्या होता है कि हम उनकी भाषा में उनको नहीं बता पाते हैं, तो पिताजी को वो बातें समझ में नहीं आती है। पिताजी को जब बातें समझ में आ जाएंगी तो आपकी अपनी एनर्जी और पिताजी की एनर्जी, वो डबल एनर्जी हो जाएगी और वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, वो आपको बनना बहुत 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 ईजी हो जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ।
थैंक यू पीयूष जी। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ। ये प्रश्न थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है और इसमें ये कहा जाता है कि बहुत बार जब हम काम करते हैं तो अपने लाइफ में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई चलो हम जो कर रहे हैं इस बात से हम खुश हैं, हम संतुष्ट हैं। विवेक गुप्ता जी ये सवाल पूछते हैं कि समटाइम्स स्टेबल जॉब इन प्रोफेशनल लाइफ ब्रिंग्स कॉम्प्लेसेंसी बट इट ऑल्सो ब्रिंग्स पीस एंड हैप्पीनेस इन पर्सनल लाइफ। Is it okay to be content and continue with stability, or one should go out of the comfort zone at the cost of disturbing personal life? मैं समझता हूँ बहुत सारे हमारे यंग दोस्तों को ये सवाल होता है कि जब आपको कोई जॉब अच्छी लगने लग जाती है तो फिर बहुत बार लोग ये कहते हैं कि आप कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं, आपको थोड़ा एडवेंचरस बनना चाहिए, कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, बट आपकी पर्सनल लाइफ उस चीज से खुश होती है। तो क्या करना चाहिए, मतलब ऐसा कर लेना चाहिए, ये पूछते हैं।
देखिए, मैं ब्रह्मा कुमारीज में रह करके तो आपको यही बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी चीज है कंटेंटमेंट। मनी इज नॉट एवरीथिंग, लेट मी टेल यू, क्योंकि मनी भी जो अर्न कर रहा हूं उसका भी एंड रिजल्ट में कहीं ना कहीं खुशी और संतुष्टता देख रहा हूं। तो अगर आप अपने जॉब से संतुष्ट हैं, मेरे एक मित्र हैं, मैं उनका नाम आपको नहीं बता रहा हूं, उन्होंने एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 35 वर्ष काम किया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, और मैंने देखा कि वो खुद इतने खुश और उनके बॉस भी उनसे खुश और उनकी सैलरी भी बढ़ती रही और इतना अच्छा उनका सारा जिंदगी निकला। वो ब्रह्मा कुमारी से भी इतने अच्छे से जुड़े रहे और यहाँ भी इतना सारा कंट्रीब्यूट वो अपनी तरफ से करते रहते हैं अभी भी। तो मेरा कहने का भाव यही है कि मेरी चॉइस क्या है। कंफर्ट जोन को तो हमें जरूर ब्रेक करना है, बट वी शुड नेवर एवर ब्रेक आवर कंफर्ट जोन ऑन द कॉस्ट ऑफ माई मेंटल पीस, माई स्टेबिलिटी, माई कंटेंटमेंट, माई हैप्पीनेस, क्योंकि अगर मेरी खुशी चली गई, अगर मेरी कंटेंटमेंट चली गई, तो मैं चाहे कितना भी अर्न कर लूं, फिर मुझे वो दोबारा से प्राप्त होने वाला नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं देयर शुड बी ए बैलेंस कि हमें कंटेंटमेंट भी बना रहे और हमारा वेतन भी बढ़ता रहे, हम अच्छी अच्छी कंपनियों में भी जरूर ज्वाइन करते रहे। अगर आप मेडिटेट करेंगे तो जरूर आपको राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। आपका धन्यवाद
जी। अगले प्रश्न पर मैं आता हूँ। अगला प्रश्न हमारे साथ संगीता गुप्ता जी पूछते हैं। वो कहते हैं, मेरी बेटी निकिता है, उसको अक्सर कुछ ना कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। प्लीज मार्गदर्शन करें कि वो जॉब भी करती है बट उनको जो फिजिकल इलनेस है उससे रिलेटेड चीजें हैं, तो उसके बारे में उनको क्या आउटलुक रखना चाहिए।
वो सवेरे उठ करके अपने आप को बोले आई एम ओके, ये पांच पांच बारी बात बोले, और वो केवल बोले नहीं लेकिन इस बात को मन से स्वीकार करें कि मैं ठीक हूं। मैं एक एग्जाम्पल यहां देना चाहूंगा, थोड़ी हंसी की बात भी है और थोड़ी पते की बात भी है। एक बहुत नामी ग्रामी कार्डियोलॉजिस्ट और उनकी पत्नी हार्ट की पेशेंट, तो वो दोनों सिनेमा देखने चले गए। सिनेमा वाज ऑन, दे वर एंजॉयिंग सिनेमा लाइक एनीथिंग। तो अचानक पत्नी को सीने में दर्द हुआ और उन्होंने अपने पति देव को कहा कि सुनिए, मेरे सीने में बहुत तकलीफ हो रही है, आपके पास कोई दवाई है? तो डॉक्टर साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मेरे पास ये गोली है, आप अपनी जीभ के नीचे रख लीजिए। तो सचमुच उन्होंने वो गोली अपनी जीभ के नीचे रख ली। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट डॉक्टर साहब ने पूछा, हाउ आर यू? तो मैडम ने स्माइल करते हुए बोला, आई एम ओके। तो डॉक्टर साहब ने भी स्माइल किया, कहा, मेरी कोट का बटन जो आपकी जीभ के नीचे रखा है उसको वापस कर दीजिए। तो निकिता जी, ज्यादातर बीमारियां जो हैं आज वो मनोकायिक हैं, जिनको हम कहते हैं साइकोसोमेटिक। मैं एम्स में गया हूं, मैंने 10 लेक्चर्स की सीरीज वहां की थोड़े दिन पहले ही, तो मुझे वहां डॉक्टर्स ने बताया कि ज्यादातर बीमारियां आज हमारे मन में है, मैं बीमार हूं। तो सबसे पहले आपको अपनी बिटिया के मन से ये निकालना है कि मैं बीमार नहीं हूं, आई एम ओके। इसको मेडिकल साइंस कहती है फेथ हीलिंग, आस्था से उपचार। बाकी अगर आपको लगता है कि किसी डॉक्टर्स को भी कंसल्ट करना चाहिए तो आप डॉक्टर्स को भी कंसल्ट करें, लेकिन दोनों बातें साथ साथ चलनी चाहिए। केवल दवा से बात बनने वाली नहीं है, लेकिन दवा के साथ दुआ भी होती है तो सब कुछ संभव है। थैंक यू वेरी मच
जी। मैं समझता हूँ ये जो बात आपने अभी कही, ये बहुत सारे मेडिकल रिसर्च में इसके ऊपर काम हो रहा है और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। हालांकि बहुत सारे दोस्त हैं जिनके सवाल अभी भी मेरे पास बाकी हैं, बट वक्त ये कहता है कि हम और सवाल नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, आज जो भी सवाल आपने पूछे हैं उन सभी सवालों के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने बेझिझक अपने मन के बात हमारे साथ शेयर करते हैं, और आपके सवालों के लिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे एक्सपर्ट से आपको जवाब भी मिल सके। आप सभी की तरफ से मैं पीयूष भाई जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो आज हमारे साथ दिल्ली से स्ट्रेट अवे जुड़े, लाइव आए। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष भाई आपका। रिक्वेस्ट करता हूँ पीयूष भाई, जैसे हर दिन हमारे साथ एक मास्टर ऑफ मेडिटेशन जुड़ते हैं तो हम उनके साथ मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए आप हमें एक गाइडेड मेडिटेशन करवाएं। और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल हमारे एक दोस्त ने पूछा है, और वो कहते हैं कि वो मेडिटेशन के लिए नए हैं और वो मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेडिटेशन प्रैक्टिस के दौरान वो ये पूछते हैं कि गाइडेड मेडिटेशन ही करना चाहिए, क्योंकि वो यूट्यूब से मेडिटेशन कॉमेंट्रीज को देखकर मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि क्या ऐसा ही करना सही है कि या हमारा डिपेंडेंस मेडिटेशन कॉमेंट्रीज पे नहीं होना चाहिए, ये वो प्रश्न भी पूछ रहे थे। तो आप गाइड भी करें और गाइडेंस के साथ आप मेडिटेशन पे भी हमें ले जाएं।
वैसे तो गाइडेड मेडिटेशन बुरा नहीं है टू बिगिन विद, लेकिन फिर अंततः हमें मेडिटेट तो अपने आप ही करना है, तो हम बाद में फिर अपने आप भी उसको कर सकते हैं। मैं अभी भी कई बार, मुझे कमेंट्री सुन के मेडिटेट करना बहुत अच्छा लगता है, बट वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट। और अगर हमारे जो मित्र जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है, अगर वो हमारा स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो मेडिटेशन का है 7 डेज का, 1/2 आवर डेली, तो अगर वो एक बारी कर लेंगे, आजकल वो ऑनलाइन भी हो रहे हैं, तो जरूर उनको उनके प्रश्न का समाधान मिलेगा। अब हम मेडिटेट करते हैं। सिट स्ट्रेट, माई बैक बोन शुड बी स्ट्रेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यू कैन कीप योर आईज क्लोज्ड और मे बी ओपन एज पर योर कन्वीनियंस। लेट मी विदड्रॉ फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। And take a journey inward and upward. मेरा शरीर, मेरा वस्त्र है, मैं इसका मालिक हूं। मेरा शरीर गाड़ी के समान है, मैं आत्मा इसकी चालक हूं। दिस बॉडी इज लाइक हार्डवेयर एंड आई एम इट्स सॉफ्टवेयर। लेट मी फोकस ऑन द सेंटर ऑफ माय फोरहेड, In between my two eyebrows, the place is known as Brahkuti. In fact, Brahkuti is the seat of the soul in this body. So I am a soul. S-O-U-L means subject of universal love. I'm a shining star. I'm a pure soul, positive soul, powerful soul, peaceful soul. I'm spreading peaceful vibrations all around me. The surroundings have become soothing. The environment has become pleasant. I'm enjoying these moments. I'm totally relaxed. Inside me, I feel cool and calm and quiet. Meditation. If I do daily in the morning for some time, this can recharge the battery of the soul. Meditation increases my willpower, concentration power, decisioning power, and self-confidence. And with all these powers, I learn to work at will. I become my own guide, my own teacher, my own mentor. Meditation is art of living. Jeevan jeene ki kala hai. Meditation de-stresses me. Meditation brings harmony in my relationships. Meditation is best time management. Meditation is positive thinking. So, let me meditate daily. This is need of the hour, call of the time. Shanti, Shanti, Shanti. शांत है, शांत है।